उपस्थित सुधीजनों, पूज्य देवियों, हम प्रतिदिन और कुछ लोग तो पूरे दिन भर गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। थोड़ी सी उसी की चर्चा करेंगे। आपने बहुत सारी व्याख्याएं पढ़ी होंगी भी। भारतीय संस्कृति में कुछ गिने चुने ऐसे वाक्य होते हैं किसी भी भाषा में, वैसे तो दुनिया के किसी भी भाषा में, जो बहुत लोकप्रिय और हर व्यक्ति को आता है। इसी तरह हमारी संस्कृति में जो सबसे प्रसिद्ध वाक्य है वो गायत्री मंत्र है। इसे गायत्री इसीलिए कहते हैं कि ये गायत्री छंद में है। वेदों में छंदों का बड़ा महत्व होता है। छंद मतलब मीटर्स। किसी वाक्य को एक खास लय में बोलने के लिए जो मीटर्स बनाए जाते हैं उसे छंद कहते हैं। तो इस मंत्र के साथ साथ छंद भी प्रसिद्ध हुआ। गायत्री मंत्र तीनों वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद और साम वेदों में, तीनों वेदों में इसकी उपलब्धि होती है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि आचार्य संत हुए सब गायत्री मंत्र की स्तुतियां करते रहे। छांदोग्य उपनिषद में एक छोटी सी कथा आती है, आख्यायिका आती है कि ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की, रचना करने के बाद सोचा कि मैं इसको सार रूप में लोगों तक पहुंचाऊं। कहते तीनों लोगों को उसने निचोड़ा और तीन वेद बनाया। फिर ईश्वर ने सोचा ये तीन वेद भी बहुत, इनसे को इनका भी मैं सार निकालूं और लोगों तक पहुंचाऊं। यदि तीनों वेदों को निचोड़ा तो तीन वाक्य मिले। तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया, जिसे आप गायत्री मंत्र कहते। फिर ईश्वर ने सोचा नहीं, इसका भी सार निकलना चाहिए, ये और संक्षिप्त होना चाहिए और समराइज्ड होना चाहिए। उन्होंने तीन शब्द निचोड़ा जिसे हम व्याहृति कहते हैं, भूः भुवः स्वः। फिर ईश्वर ने सोचा नहीं, इसका भी सार निचोड़ू तो उन्होंने तीन अक्षर में संसार को बताने की कोशिश की जिसे अ उ म कहते हैं और जिसको मिलाकर आप ओम बोलते हैं। ओम की चर्चा तो हम बाद में कभी करेंगे जब लगातार बीच में कोई दूसरा प्रोग्राम ना हो, चार पांच रविवार तक ओम की व्याख्या करेंगे। आज हम व्याहृति पर शुरुआत में करेंगे क्योंकि ये जो गायत्री मंत्र है इसको तीन टुकड़े हैं। इसमें पहले टुकड़ा तो प्रणव कहते हैं। प्रणव का मतलब ओम। अब प्रणव का अर्थ होता है जिसके द्वारा, जिस शब्द से हम अच्छी तरह ईश्वर की स्तुति कर सके। स्तुति मतलब उसकी प्रशंसा कर सके, उसका गुणगान कर सके। अब ये छोटा सा अक्षर है, कभी चर्चा करेंगे। दूसरा भाग है मंत्र का व्याहृति, जिसमें भूर भुव स्वः तीन शब्द हैं। इसे व्याहृति इसीलिए कहते हैं, इनका व्याहरण हुआ है, अच्छी तरह इनको इकट्ठा किया गया है, कलेक्टेड है, ये संग्रहित है। कहां से? तीनों वेदों से। बाकी मंत्र का जो तीसरा हिस्सा है वो वाक्य है, तत्सवितुर वरेण्यम से लेकर धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र है तत्सवितुर लेकर के धियो यो नः प्रचोदयात, इसमें भी तीन वाक्य है। हम ओम की चर्चा आज नहीं करेंगे, आज व्याहृति से चर्चा करते हैं। भूर भुव स्वः, इसको व्याहृति इसीलिए कहते हैं, मैंने कहा यह चुना गया है। भू का अर्थ होता है सत्ता, एग्जिस्टेंस, किसी की होना। संसार में जितने भी वस्तु हैं, जड़ है या चेतन है, उसमें जान है या नहीं है, हर वस्तु की एक स्वाभाविक धर्म है हर वस्तु का कि वो अपनी विशालता में, अपनी समग्रता में मिलना चाहता है। आग हमेशा जलती है ऊपर की ओर, क्योंकि उसको उस महान ज्योतिष पुंजों में की ओर गति करना है। पानी की गति हमेशा नीचे की ओर है, समुद्र में मिलने के बाद वो शांत हो जाता है। जब कोई ठोस वस्तु, सॉलिड वस्तु नष्ट होता है तो वो जमीन में समा जाता है, वो पृथ्वी में समा जाता है। कोई लिक्विड हो, जब व्यक्ति मरता है तो उसका जो लिक्विड है वो पानी के रूप में बदल जाता है, उसके सांस वायुमंडल में मिल जाता है, उसका शरीर पृथ्वी में मिल जाता है, उसके शब्द आकाश में मिल जाते हैं। तो जो चीजें हैं वो अपनी समग्रता में मिलने के लिए व्याकुल होते हैं, और जब तक नहीं मिलता तब तक तड़पते रहते हैं। इसीलिए जब भी हम पैदा होते हैं हमें मरने की जल्दी रहती है, कब मरेंगे कोई भरोसा नहीं, क्योंकि हमारे शरीर जो बना पांच तत्वों से, उनको अपनी समग्रता में जाना है। जैसे पानी को समुद्र में मिलकर शांति मिलती है, आग को ऊपर समाने पर शांति मिलती है, छोटे कमरे की हवा को खोल दीजिए वो बाहरी दुनिया के हवा से मिलकर के शांत हो जाता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी जो भी जीवित प्राणी है, जिनमें प्राण है, जीवन है, इनमें तीन बड़ी ख्वाहिशें होती हैं जो कभी पूरी नहीं होती है। एक तो कोई भी प्राणी कभी मरना नहीं चाहता है। ऐसा नहीं कि हम ही नहीं मरना चाहते, कीड़ा मकोड़ा चींटी पेड़ पौधा जिनमें भी जान है कोई नहीं मरना चाहता है। इसका प्रमाण क्या है? हर कोई अपनी बचाव की कोशिश करता है। आप किसी कीड़े को भी छूने को कोशिश करिए, वो अपने ढंग से अपना बचाव करता है। हम खाना खाते हैं, सोते हैं, कमाते हैं, जिंदगी भर में जो कुछ भी अच्छा बुरा उठपटांग गंदा अच्छा काम करते हैं, इसीलिए करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जी सकें। और अगर हमें कभी 100 साल से ज्यादा भी जी जाए, वैसे औसत इंसान का 100 साल है, तो भी हमें तृप्ति नहीं मिलती है। कितना भी आदमी बीमार हो, परेशान हो, तड़पता हो, बुजुर्ग हो, मृत्यु के मुंह पर पहुंच जाए, वो मुंह में तो जरूर बोलते हो मर क्यों नहीं जाता हूं, पर सचमुच पूछिए आपको मार दे तो मरना नहीं चाहता है कोई। क्योंकि हमारी जो अभिलाषा है ना, हम उस अमृत को पाना चाहते हैं, ऐसी हालत को पाना चाहते हैं जो कभी मरे ही नहीं। इसीलिए हमारी संस्कृति में जो चार मेन मुख्य लक्ष्य रखे गए, धर्म, हर आदमी को धर्म चाहिए, अच्छा काम करना है क्योंकि सुख चाहिए, हर आदमी को धन संपत्ति चाहिए, अर्थ चाहिए, हर आदमी को अपनी इच्छाएं कामनाएं इंद्रियों को संतुष्ट करना है, और आखिर मोक्ष है। ये आम लोगों को समझ में नहीं आता ये मोक्ष क्या चीज है, यही है। कोई मरना नहीं चाहता है क्योंकि हम मरते रहते हैं। इसीलिए ऋषियों ने ये व्यवस्था दी कि अगर तुम ऐसे खास विधि से जाओगे तो तुम्हें भी मुक्ति मिल जाएगी। किससे? मौत से मुक्ति मिल जाएगी, तुम अमर बन जाओगे। दुनिया में तीन चीजें ऐसी हैं जो मरते नहीं है, हमेशा अजर अमर हैं, इसीलिए उनको हम सत कहते हैं। सत मतलब सत्ता, जिसकी एग्जिस्टेंस है। वैसे हमारी भी सत्ता है, इस चश्मा का भी सत्ता है, पर किसी का सत्ता 1 साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल, 5000 साल, 5 लाख साल, 5 करोड़ साल। आप किसी को पूछेंगे आप हैं तो वो है, पर वो 1950 से पहले नहीं था, 2012 के बाद या 50 के बाद नहीं होगा। हमारी सत्ता एक लिमिटेड टाइम के लिए, उससे पहले हम नहीं थे, उससे बाद भी नहीं है। पर दुनिया में ऐसे भी चीजें हैं, आप करोड़ों साल पहले पूछते तो भी उनकी सत्ता है, करोड़ों साल बाद भी पूछेंगे तो भी उनकी सत्ता है। ऐसी जो हमेशा रहने वाली चीजें हैं, ये तीन होते हैं। एक तो परमात्मा परमेश्वर है, हमारी अपनी आत्मा है, और दूसरी इस विशाल संसार की जो मूल परमाणु अवस्था है, जिसे भारतीय दर्शन में हम प्रकृति कहते हैं, वो तीन चीजें होती हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। भू, ये तीनों विशाल अनंत और अनादि सत्ताओं का प्रतीक है। भुव, भुव का अर्थ होता है अवचेतन, कॉन्शसनेस, चेतना। कोई भी व्यक्ति कभी कितना भी जाने, उसकी जाने की कभी तृप्ति नहीं, जानने की तृप्ति नहीं होती है। इसीलिए आप देखेंगे, वैसे तो नियम है कि व्यक्ति जितना अधिक ज्ञानी होता है वो अपने आप को इतना ज्यादा अज्ञानी समझता है, उतना ज्यादा मूर्ख समझता है, क्योंकि ज्ञान के बढ़ने के साथ साथ ये एहसास होता है कि ज्ञान कितना बड़ा है और मैं कितना छोटा जानता हूं। जितना कम जानेंगे उतना लगेगा कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। ज्ञान अनंत है। हमारे अभी मेडिकल साइंस के बैठे, आज से 500 साल पहले मेडिकल साइंस में जितनी शाखाएं थी, आज तो इतनी शाखाएं, ये दांत के लिए भी दो, एक डेंटल सर्जरी भी है, एक मेडिसिन भी है, उसमें भी इतने सारे हैं। और आप सब दांत की पढ़ते रहिए तो जिंदगी गुजर जाता है, फिर भी आपका खत्म नहीं होता है। सिर्फ शरीर के लिए हजार डिपार्टमेंट है, सैकड़ों डिपार्टमेंट, उसमें भी जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी पूरी नहीं होती है, जिंदगी पूरी हो जाती है, ज्ञान पूरा नहीं हो पाता है। इसीलिए जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा आपकी अज्ञानता का एहसास होता जाएगा। इसीलिए ज्ञानी आदमी का लक्षण होता है कि वो विनम्र होता है, वो झुका हुआ होता है, क्योंकि उसी को पता होता है कि उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। अज्ञानी को हमेशा ध्यान रहता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। तो जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना भी आपको और जानने की इच्छा होगी। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी जानने की इच्छा खत्म हो जाए। आप कहेंगे नहीं, हमारे में से बहुत है जिसको कुछ जानने की इच्छा नहीं है, उसको बस अपना परिवार पालना है, पैसा कमाना है, उसको कोई जानने की इच्छा नहीं। नहीं, वो सत्संग में जानने की इच्छा नहीं होगी, उसको फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होगा, उसको वेद पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होगा, पड़ोस में झगड़ा हो रहा हो जानने की जरूर इच्छा होगी, रोड में एक्सीडेंट हुआ हो देखने की जरूर इच्छा होगी, फोन पर मेरी बीवी या मेरा पति बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं ये जानने की इच्छा जरूर होगी, किसी के एसएमएस पढ़ने की इच्छा, क्योंकि ये इंसान की फितरत है। सोसाइटी ने बांध रखा कि भाई तुम ये नहीं कोशिश कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, मन बेचैन होता है, मौका मिलते ही ढूंढ डालते हैं, कुछ पट डालते हैं। ज्ञान की कोई सीमा नहीं, आप कितना भी जाने आपको और जानने की इच्छा होती है। क्यों? और जिस दिन आपको ज्ञान की समग्रता मिल जाएगी फिर आपकी जानने की इच्छा खत्म हो जाएगी। इसीलिए वेद कहता है तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। वो कौन है? वो जो परमात्मा है, जो सर्वज्ञता का खान है, जब उसको व्यक्ति पा जाता है फिर उसकी पाने की इच्छा खत्म हो जाती है, मरने की इच्छा खत्म हो जाती है जब हम उसी को पा जाते हैं। इसीलिए वो सत है। सत मतलब हमेशा रहने वाला, समग्र है, सत्ता का समग्रता उसी में समाया हुआ है, वो ज्ञान की समग्रता उसी में है। ज्ञान चेतना का धर्म होता है, इसीलिए ज्ञान का अर्थ चेतना है, मतलब कॉन्शसनेस या जो चेतना है उसी का जो बाहरी परिणाम वो ज्ञान होता है। किसी जड़ वस्तु को ज्ञान नहीं होता है, कितना भी जड़ जैसा दिखने वाला हो उसको ज्ञान होता है। पेड़ में जान है, आत्मा है, इसीलिए पेड़ को भी ज्ञान होता है। सर्दी में वो सिकुड़ जाता है, स्प्रिंग में वो वसंत में खिल जाता है, उसको भी अपना ज्ञान होता है, लिमिटेड है, सीमित है, पर उसको ज्ञान होता है। तीसरी चीज है, वो जो परमात्मा है वो सत है, वो चित है, वो चेतना स्वरूप है, वो सत्ता वाला है, और वो आनंद स्वरूप है। स्व मतलब आनंद, भूर्भुवः स्वः, इसी स्व से बना स्वर्ग। स्वर्ग का अर्थ होता है सुख के प्रति ले जाने वाला, ग मतलब जाना, स्व मतलब सुख, सुख के प्रति ले जाने वाला। जिस भी प्रक्रिया से, जिस भी तरीके से मुझे सुख मिलता है वो स्वर्ग है। आजकल जो स्वर्ग का कॉन्सेप्ट है अलग अलग रिलीजियन में, किसी का सातवें आसमान पर स्वर्ग है, किसी के चौथे आसमान पर, किसी के आसमान पर है, किसी के बादल के उस तरफ है, किसी के कैलाश पर्वत पर है, किसी का हिमालय पर है, वगैरह वगैरह। ये स्वर्ग क्या है? ये फ्रस्ट्रेटेड लोगों की सपने, इमेजिनेशन है।
प्रस्टिटेट शब्द से आप घबराएंगे, बड़ा कठोर शब्द बोलता है। स्वर्ग में क्या क्या है? सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, कामधेनु है। कामधेनु समझते हैं? ऐसी गाय जिसके पास खड़े होने पर जो कुछ मांगेंगे सब मिलेगा। कल्प वृक्ष है, बस मांगने की जरूरत नहीं, पेड़ के पास खड़े होकर सोचने की जरूरत है, सब हाजिर हो जाएगा। आप वहां कभी बुढ़ा नहीं होंगे, हमेशा जवान रहेंगे। ध्यान रखिए, हर आदमी इन्हीं चीजों के लिए मरता है, मैं बुढ़ा ना हो, मेरी इच्छाएं हमेशा पूरी हुए, होती ही नहीं है पूरी। कितना करोड़पति बन जाऊं, राष्ट्रपति बन जाऊं, दुनिया का बन जाऊं, तो भी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। तो क्योंकि इच्छा पूरी नहीं होती है, तो हमारे लोगों ने कहा, देखो एक जगह है जहां पर जाने पर तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। क्या? तुम अगर शिव का भक्त बन जाओ, तुम अगर क्राइस्ट का भक्त बन जाओ, तुम अगर अल्लाह का भक्त बन जाओ, तुम अगर कृष्ण का भक्त बन जाओ, तुम हम ऐसे जगह पहुंचोगे जहां तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हर आदमी को एक से अधिक लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा है। सोसाइटी अलाउ नहीं करता, बोले चिंता मत करो, मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, वहां तुम्हें सुंदर सुंदर अप्सराएं मिलेंगी, फिर मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, पर वहां तुम बुढ़ा नहीं होगे, जवान रहोगे। किसी भी रिलीजन में स्वर्ग में सुंदर सुंदर लड़के नहीं मिलते। आपको पता है क्यों? क्योंकि सारे पुराण और धर्मशास्त्रों को लिखने वाले पुरुष हैं। अगर स्त्रियां लिखती तो जरूर लिखते कि वहां सुंदर सुंदर पुरुष भी मिलते हैं। वहां 12 महीने बसंत रहता है, हम यहां गर्मी में तड़पते हैं, सर्दी में तड़पते हैं। तो आचार्यों ने कहा, चिंता मत करो, अगर हमारे धर्म ये करोगे, मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, वहां 12 महीने वसंत मिलेगा। स्वर्ग का कंसेप्ट नए जमाने के साथ बदल रहा है, इसीलिए आजकल के नई पीढ़ी के लोग किसी भी धर्म में आस्था नहीं रखते, ना क्रिश्चियनिटी में ना मुस्लिम में। क्यों रखते हैं? क्योंकि स्वर्ग नहीं चाहिए ना। अब घर घर में ऐसी है, 12 महीना वसंत है, मरने के बाद स्वर्ग क्यों जाऊं ऐसी के लिए? लोगों के पास इतनी संपत्ति है, साइंटिस्टों ने इतने नए नए चीजें आविष्कार कर डाला कि पहले लोगों के पास पैसा होता था, खर्च नहीं कर पाते थे। कल्पना करिए, अकबर की, बड़े बड़े नवाबों की पैसा था, धन संपत्ति थी, गर्मी लगती थी तो बड़े बड़े वो लटकाए थे, चटाई लटकाया होता था, 2-4 आदमी से हिलाते थे पानी छिड़का छिड़का करके। अब क्या है, एक मिडिल क्लास का आदमी भी अकबर से ज्यादा सुख भोगता है। इंडिया में तो 12,000 रुपए में एसी मिलता है, यहां पता नहीं कितने डॉलर में मिलता होगा, कितने $100 में। एसी ऑन करो, आप अकबर से ज्यादा सुख भोगोगे। स्वर्ग जाने की क्या जरूरत है? आपके पास पैसे हैं, आप स्वर्ग जैसे माहौल में जी सकते हो, जो चाहे। आपके पास नौकर चाकर हर तरह की सुविधाएं वैज्ञानिकों ने हमारे विज्ञान के समृद्धि के साथ मिल गया। इसीलिए नई पीढ़ी के लोगों को अब धर्म पर आस्था कम हो रहा है, क्योंकि धर्म कह रहा है, जो तथाकथित आधुनिक धर्म है वो आपको स्वर्ग दिलाना चाहता है, सुख दिलाना चाहता है। मैं अगर रात भर यहां क्लॉक में नाच सकता हूं, मेरे पास ये सुविधाएं है, मैं मरने के बाद स्वर्ग में क्यों अप्सराएं ढूंढने जाऊंगा? इसीलिए आधुनिक धर्मों को सोचना चाहिए, सो कॉल्ड स्वर्ग को कैसे बदला जाए। हमारे वैदिक संस्कृति में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि स्वर्ग मतलब मरने के बाद कहीं जाएंगे। स्व मतलब सुख, ग मतलब जाना, जिस भी प्रक्रिया से आपको सुख मिले वो स्वर्ग है। वो आपका आपका काम हो, आपका घर हो, आपके सत्संग हो, आपका ऑफिस हो, आपके व्यवहार हो, आपका आचरण हो। स्वर्ग पाने का साधन क्या है? बोले धर्म है। धर्म मतलब चर्चा करेंगे, अच्छा काम। आप राइटर्सनेस को फॉलो करिए, आप अपने चरित्र को सुधारिए, अपने एक अच्छा काम करिए, आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, यही स्वर्ग है। तो स्वह का मतलब सुख है, हर आदमी को सुख चाहिए, पर कितना भी सुख मिले तो भी हम बेचैन है और सुख चाहिए। जो के पास साइकिल है, जिसके जो पैदल चलता है वो दुखी है कि मेरे पास साइकिल क्यों नहीं है, पर जिस दिन साइकिल आ जाता है 15 दिन तक सुखी रहता है, उसके बाद वो भी दुखी है। इस साइकिल कोई साइकिल है, बाइक होता, मोपेड होता, अगर बाइक आ जाती है तो भी वो 15-20 दिन तक सुखी रहता है, फिर दुखी है मेरे पास कार क्यों नहीं है। कार वाला थोड़ी दिन नए नए कार चला के सुखी रहता है, मस्ती करता है, फिर दुखी हो जाता है मेरे पास महंगी कारें क्यों नहीं है। महंगी कारें जिसके पास है उसको भी पूछिए, वो दुख है कि मेरा अपना प्राइवेट जेट क्यों नहीं है, हेलीकॉप्टर क्यों नहीं है। जिसके पास प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर है वो भी दुखी है, वो सुख उसको कम पड़ रहा है कि मैं सैटेलाइट क्यों नहीं, मैं वो उपग्रह में क्यों नहीं जा सकता। तो अगर उसके पास वो भी है वो तब भी दुखी होगा। गांव का सरपंच भी दुखी है कि मैं एमएलए क्यों नहीं हूं, एमएलए भी दुखी है कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों नहीं हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी दुखी है कि मैं मिनिस्टर क्यों नहीं हूं, मिनिस्टर भी दुखी है मैं प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं हूं, प्राइम मिनिस्टर दुखी है कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों नहीं हूं। क्योंकि दुनिया के बाकी देश वाले सोचते हैं अमेरिका का राष्ट्रपति ज्यादा पावरफुल है, अमेरिका का राष्ट्रपति भी परेशान है, तभी तो दुनिया में इतने दंग लड़ाइयां करते रहते, सारी दुनिया का मैं राजा क्यों नहीं बन जाता हूं। अगर कोई पूरे दुनिया का राजा बन भी जाए वो भी दुखी है, मैं सारा 3 लोगों का राजा क्यों नहीं बन जाता हूं, आखिर मैं ईश्वर क्यों नहीं बन जाता हूं। हमारे साइंटिस्ट भी कभी कभी सपने देखते, कभी कभी घोषणा कर डालते हम ईश्वर बन गए, तब भी दुखी है क्योंकि हमारे सुखों का कोई सीमा नहीं है, जितना भी मिले हम दुखी है। इसीलिए हमारी संस्कृति ने, हमारे शास्त्रों ने कहा तुम्हारे सुख के अंतिम दिन उसी में है जिस दिन तुम्हें वो मिल जाए परमात्मा, वो तुम्हारा अनंत सुख वहीं मिल जाएगा, क्योंकि वही आनंद स्वरूप है, वो जो परम तत्व है, परमानंद है, अमर, वही सत है, वही चित है, वही आनंद है, वो भू है, भुव है, स्व है। जब भी हम मंत्र प्रारंभ करते, गायत्री मंत्र इसी से प्रारंभ करते, वो सच्चित आनंद समस्त संसार में एकमात्र हमेशा रहने वाला, हमेशा ज्ञान पूर्ण, चेतना पूर्ण, समग्र आनंद का स्रोत है, उसी को प्रणाम करते हुए मंत्र को आरंभ करते हैं। मंत्र की चर्चा अगले बार करेंगे, इसी के साथ यही विराम लेते हैं। ओम शांति।